यरमिया अध्याय तीन। यरमिया अध्याय तीन पहला पद। वे कहते हैं, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में दिए गए तलाक के नियमों का यहां वो संदर्भ दे रहा है। यरमिया अध्याय तीन पद एक। यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे और वो उसके पास से जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए, तो वो पहला क्या उसके पास फिर जाएगा? क्या वो देश अति अशुद्ध ना हो जाएगा? व्यवस्था के अनुसार यदि आपने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और यदि वो किसी और पुरुष से विवाह कर ले, तो आप चाहकर भी उसे फिर विवाह नहीं कर सकते हैं। व्यवस्था विवरण 24 अध्याय का ये नियम था, परंतु परमेश्वर कहता है, यरमिया अध्याय तीन पद एक, कि तूने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया है, क्या तू अब मेरी ओर फिरेगी? मैं तुझे पुनः स्वीकार करूंगा। ओह, परमेश्वर कैसा धीरजवंत है! परमेश्वर का प्रेम देखिए, मेरे लिए तो ये एक अद्भुत बात है। तूने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया है, क्या तू अब मेरी ओर फिरेगी? परमेश्वर कहता है, तू आ जा। यरमिया अध्याय तीन पद दो। मुंडे टिलों की ओर आंखें उठाकर देख, क्या ऐसी कोई जगह है जहां तूने आत्मिक व्यभिचार ना किया हो? यरमिया अध्याय तीन पद दो में आगे लिखा है, मार्गों में तू ऐसी बैठी जैसे एक अरबी जंगल में, अर्थात जैसे जंगल में लुटेरे बैठते हैं और घात लगाकर प्रतीक्षा करते हैं। यरमिया अध्याय तीन पद दो से लेकर पांच तक। तूने देश को अपने व्यभिचार से अशुद्ध कर दिया है, इसी कारण झाड़ियां और बरसात की पिछली वर्षा नहीं होती। तो भी तेरा माथा वेश्या का सा है, तू लज्जित होना ही नहीं जानती। क्या तू अब मुझे पुकार कर कहेगी, हे मेरे पिता, तू ही मेरी जवानी का साथी है? क्या वो मन में सदा क्रोध रखे रहेगा? क्या वो उसको सदा बनाए रहेगा? तूने ऐसा कहा तो है, परंतु तूने बुरे काम प्रबलता के साथ किए हैं। यरमिया को दिए गए परमेश्वर के प्रथम संदेश का ये अंत है। पद छह से दूसरा संदेश आरंभ होता है। यरमिया अध्याय तीन पद छह। फिर योशाया राजा के दिनों में यहोवा ने मुझसे ये भी कहा। यरमिया अपने दूसरे संदेश की भूमिका प्रस्तुत करता है। यरमिया अध्याय तीन पद छह। क्या तूने देखा कि भटकने वाली इसराइल ने क्या किया है? उसने सब ऊंचे पहाड़ों पर और सब हरे पेड़ों के तले जा जाकर व्यभिचार किया है। जैसे मैं पहले कह चुका हूं, उन्होंने ऊंचे स्थानों पर और वृक्ष कुंजों में उपासना स्थल बनाए थे, इसी उपासना को परमेश्वर व्यभिचार कहता है। ये उपासना प्रजनन की देवी की थी। इस उपासना में प्रजनन प्रथाएं थी जिनमें संभोग एक क्रिया थी। यरमिया अध्याय तीन पद सात। तब मैंने सोचा, जब ये सब काम वो कर चुके तब मेरी ओर फिरेगी, परंतु वो ना फिरी। और उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा ने ये देखा। आप देख ही चुके हैं कि इसराइल उत्तरी राज्य का क्या हाल हुआ है। उन्होंने मूर्ति पूजा की, उन्होंने इन झूठे देवी देवताओं की उपासना की। मैंने उन्हें पुकारा कि मेरी ओर आए, परंतु वे नहीं आए। इसकी विश्वासघाती बहन यहूदा ने ये देखा। उसने देखा कि इसराइल राष्ट्र का अंत क्या हुआ। यरमिया अध्याय तीन पद आठ। फिर मैंने देखा जब मैंने भटकने वाली इसराइल को उसके व्यभिचार करने के कारण त्याग कर उसे त्याग पत्र दे दिया, तो भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा न डरी, वरन जाकर वो भी व्यभिचारिन बन गई। दूसरे शब्दों में उन्हें इसराइल अर्थात उत्तरी राज्य की दुर्दशा को देखकर सबक सीख लेना था। उन्हें बंधुआई में जाता देखकर यहूदा को तो परमेश्वर की ओर संपूर्ण मन से लौट आना था, परंतु उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। वे भी उन्हीं कुकर्मों में लगे रहे जिनके कारण इसराइल पर परमेश्वर का क्रोध भड़का था। यरमिया अध्याय 3:9। उसके निर्लज व्यभिचारिणी होने के कारण देश भी अशुद्ध हो गया। उसने पत्थर और काठ के साथ भी व्यभिचार किया। ये उनकी छोटी छोटी पत्थर और लकड़ियों की मूर्तियों के विषय में है। यरमिया अध्याय 3:10। इतने पर भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा पूर्ण मन से मेरी ओर नहीं फिरी, परंतु कपट से, यहोवा की यही वाणी है। ये बाहरी जागृति एक प्रकार का कपट था। ये उनके मन की गहराई से नहीं था। आज भी अनेक देशों में विश्वासियों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। ये सब एक बाहरी दिखावा है। मनुष्य के जीवन में प्रभावी परिवर्तन नहीं आया है। परमेश्वर और मसीह यीशु के प्रति आज भी मनुष्य का सच्चा समर्पण नहीं है। आज मनुष्यों के मुंह में नया जन्म एक तकिया कलाम बना हुआ है। इसका प्रयोग जो भी चाहे कर रहा है, यहां तक कि इन शब्दों को सांसारिक वस्तुओं की शब्दावली भी बना दिया गया है, जैसे शैंपू आदि के विज्ञापन में। सत्य तो यह है कि इन शब्दों का महत्व ही समाप्त हो गया है। आइए हम अपने आप को देखें, क्या ये मेरे जीवन में कुछ अर्थ रखता है? क्या मैंने परमेश्वर को सच्चा समर्पण किया हुआ है? क्या मेरा प्रेम विभाजित है? क्या परमेश्वर से मेरा प्रेम पूरा नहीं है? क्या मेरा समर्पण आंशिक है, या मेरा प्रभु यीशु या परमेश्वर या आत्मिक बातों में समर्पण पूरा है? क्या मैं अब भी शारीरिक लालसाओं की अभिलाषा रखता हूं? क्या मेरा मन विभाजित है? आज परमेश्वर हमें मूर्ति पूजा से, सांसारिक बातों से, संसार से प्रीति रखने से और संसार के क्रियाकलापों से दूर चले आने के लिए पुकार रहा है। इसलिए प्रभु कहता है, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6:17-18, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। आज अनेक मनुष्य सांसारिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। वे सांसारिक वस्तुओं से प्रलोभित होकर उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। 1 यूहन्ना अध्याय 2:15, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आज आप में से अनेक विश्वासघाती यहूदा के सदृश है। परमेश्वर के लिए आपका प्रेम केवल अभिनय और दिखावा है। ये परमेश्वर के प्रति हमारे जीवन का संपूर्ण समर्पण नहीं है। आप अभ्यास पूरा करते हैं, आपके होठों से शब्द निकलते हैं, परंतु सत्य तो यह है कि परमेश्वर आपके मन को देख रहा है कि वो विभाजित है, और वो पाता है कि आपका मन वास्तव में संसार की लालसा में मगन है। ये देखकर परमेश्वर का दिल टूट जाता है। परमेश्वर कहता है, मैंने ऐसी क्या भूल कर दी कि तुम मुझसे दूर हो गए? मुझे तो वो दिन आज भी स्मरण है, जब तुम्हारा समर्पण जोशीला था, जब तुम पूरा दिन मेरी स्तुति करते थे, जब पूरा दिन तुम्हारे विचार मुझ में ही लगे रहते थे और तुम मेरे साथ ऐसी मन भावन संगति और मेल मिलाप में रहते थे। अब क्या हो गया, क्या हो गया कि तुम फिर कर संसार की बातों में लग गए? और परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, सुनो, जागो, लौट आओ। यरमिया अध्याय 3:11। और यहोवा ने मुझसे कहा, भटकने वाली इसराइल विश्वासघातिन यहूदा से कम दोषी निकली है। यहां यहूदा का दोष बड़ा है, क्योंकि वो इसराइल को देखकर भी परमेश्वर की ओर ना फिरा। यरमिया अध्याय 3:12-13। तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, यहोवा की ये वाणी है, हे भटकने वाली इसराइल लौटा, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि न करूंगा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, मैं करुणामय हूं, मैं सर्वदा क्रोध न रखे रहूंगा। केवल अपना ये अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई। परमेश्वर केवल यही चाहता है कि हम अपना अधर्म स्वीकार करें। पहला योहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परंतु यदि हम प्रतिवाद प्रस्तुत करें, मैं तो फिर भी इतना बुरा नहीं हूं, मैं तो अब भी प्रभु से प्रेम रखता हूं, मैं आज भी ये अथवा वो भला काम करता हूं, आप अपने आप को न्यायोचित ठहरा रहे हैं, ऐसी स्थिति में परमेश्वर आपके साथ व्यवहार नहीं कर सकता है। आप अपने अधर्म और अपने अपराधों को अपने प्रभु परमेश्वर के सामने स्वीकार कर लें, अपने कामों को उसके सामने स्वीकार कर लें। यरमिया अध्याय 3:13-15। और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की ये वाणी है, हे भटकने वाले लड़कों लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूं, यहोवा की ये वाणी है। तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल पीछे दो को लेकर मैं सियोन में पहुंचा दूंगा और मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। परमेश्वर ने धर्मशास्त्र का ये अंश अनेक वर्ष पूर्व दिया था और कहा था, मैं चाहता हूं कि तू ऐसा पास्टर बने। ये वो पास्टर है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है। ये वो पास्टर है जो मनुष्य को परमेश्वर के ज्ञान और समझ का पोषण प्रदान करेगा। ये परमेश्वर के मन के अनुकूल पास्टर है। मैंने कहा, प्रभु, मैं तो तेरे मन का ही पास्टर बनना चाहता हूं कि मनुष्यों को परमेश्वर के ज्ञान और समझ का भोजन प्रदान करूं। परमेश्वर इसी दिन के लिए कह रहा है कि वो दिन आता है जब वो उन्हें ऐसे चरवाहे प्रदान करेगा। यरमिया अध्याय 3:16। उन दिनों में जब तुम इस देश में बढ़ो और फूलो फलो, तब लोग फिर ऐसा ना कहेंगे, यहोवा की वाचा का संदूक, यहोवा की ये भी वाणी है, उसका विचार भी उसके मन में ना आएगा, ना लोग उसके ना रहने से चिंता करेंगे और ना उसकी मरम्मत होगी। ये उस राज्य के विषय में कहा गया है जो प्रभु का महिमामय राज्य होगा। आप इस समय वाचा के संदूक के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास अंतरवासी मसीह यीशु होगा जो हमारी नई वाचा है। आप उस राज्य में व्यवस्था और 10 आज्ञाओं के बारे में मनन नहीं करेंगे। उस संदूक में रखें हरेक निर्देश या परमेश्वर की वाचा पर मनन नहीं करेंगे जिसमें कहा गया था कि यदि तुम इन नियमों का पालन करोगे तो मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, ये आदेश वापस ले लिया जाएगा क्योंकि यीशु ने कहा, ये लहू मेरी नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। यरमिया अध्याय 3:17। उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा क्योंकि यीशु फिर से आने वाला है और वो यरूशलेम में विराजमान हो पूरी पृथ्वी पर राज करेगा। यरमिया अध्याय 3:17-22 तक। और सब जातियां उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठी हुआ करेगी और वे फिर अपने बुरे मन के हट पर ना चलेंगी। उन दिनों में यहूदा का घराना इसराइल के घराने के साथ चलेगा और वे दोनों मिलकर उत्तर देश से इस देश में आएंगे जिसे मैंने उसके पूर्वजों को निज भाग करके दिया था। मैंने सोचा था मैं कैसे तुझे लड़कों में गिनकर वो मन भावना देश दूं जो सब जातियों के देशों का शिरोमणि है, और मैंने सोचा कि तू मुझे पिता कहेगी और मुझसे फिर ना भटकेगी। इसमें तो संदेह नहीं कि जैसे विश्वासघाती स्त्री अपने प्रिय से मन फेर लेती है वैसे ही है इसराइल के घराने तू मुझसे फिर गया है, यहोवा की यही वाणी है। मुंडे टिलों पर से इसराइलियों के रोने और गिड़गिड़ाने का शब्द सुनाई दे रहा है क्योंकि वे टेढ़ी चाल चलते रहे हैं और अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए हैं। हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देख, हम तेरे पास आए हैं क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। उस समय के यहूदियों की ये प्रतिक्रिया होगी। यरमिया अध्याय 3:23। निश्चय पहाड़ों और पहाड़ियों पर का कोलाहल व्यर्थ ही है। ये वे लोग हैं जो पहाड़ों पर ऊंचे स्वर में मूर्ति पूजा करते थे। यरमिया अध्याय 3:23। इसराइल का उद्धार निश्चय हमारे परमेश्वर यहोवा ही के द्वारा है। ऐसी किसी भी हौद में आप उद्धार नहीं पाएंगे। उद्धार केवल मसीह यीशु के द्वारा ही है। यरमिया अध्याय 3:24-25। परंतु हमारी जवानी ही से उस बदनामी की वस्तु ने हमारे पुरखाओं की कमाई अर्थात उनकी भेड़ बकरी और गाय बैल और उनके बेटे बेटियों को निगल लिया है। हम लज्जित होकर लेट जाएं और हमारा संकोच हमारी ओढ़नी बन जाए, क्योंकि हमारे पुरखा और हम भी युवा अवस्था से लेकर आज के दिन तक अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करते आए हैं और हमने अपने परमेश्वर यहोवा की बातों को नहीं माना है।